मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 13 अगस्त 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। और आप सबके साथ ही दोस्तों, विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं दुर्गेश प्रताप, आपका गांव है अनपरा, जिला है सोनभद्र उत्तर प्रदेश। अमृता कुलश्रेष्ठ, आप आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। कुंदन सिंह, नारो मुरार बिहार से हैं। अनवर खान, आपका गांव है निम्बी कलान, जिला नागौर राजस्थान। और आनंद आर संभोजी, आप हैं बेलगाम कर्नाटक से। तो दुर्गेश, अमृता, कुंदन, अनवर खान और आनंद, आप 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इन 5 मित्रों का स्वागत करने के साथ ही इसी से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और थोड़ा इस पर आप ध्यान देंगे, मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। और सूचना यह है कि जैसा मैंने अभी कहा कि जो हमारा नेक्स्ट बैच है वो 21 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और 4 नवंबर को खत्म हो रहा है। फ्रेंड्स, अब इस बैच के लिए केवल थोड़ी सी ही सीटें शेष रह गई हैं, बहुत थोड़ी सी सीटें बची हुई हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इस बैच में आने के बारे में सोच रहे हैं, अब मुझे लगता है कि उनके पास सोचने के लिए अधिक वक्त नहीं रह गया है। उन्हें चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। तो फ्रेंड्स, ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी, इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दें और यदि आप आना चाह रहे हैं तो बेहतर होगा कि जल्दी से जल्दी निर्णय ले लें। आज के मुख्य विषय में फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्नों की समझ पर ही बात करेंगे, जो सिलसिला प्रश्नों को उसकी समझ को लेकर के आप देख रहे हैं कि पिछले 3 सप्ताह से हम लोग बातें कर रहे हैं। पहले सप्ताह में हम लोगों ने बिटवीन द लाइंस और कुछ उस तरह की बातें की थी, इसके बाद फिर प्रश्नों की समझ पर हम कुछ प्रश्नों को लेकर के फिर बात करते आ रहे हैं और उसी सिलसिले को अभी हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले आइए थोड़ी सी खबरों को देख लें, हालांकि खबरों में ऐसा कुछ विशेष है नहीं। न्यूज आपने सुनी होगी फ्रेंड्स, उसमें एक शब्द आया था NDRF, ये बेसिकली नेशनल जो डिजास्टर जो मैनेजमेंट के लिए जो एक रिलीफ दल बनाया गया है, जिसको कह लीजिए कि आपदा मोचन दल कहा जाता है, प्राकृतिक आपदा मोचन दल, उसकी चर्चा थी। तो मैं यहां केवल ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि ये जो दल है हमारे, आपको इससे पहले की खबर मालूम होगी कि किस तरह से सरकार ने इसकी 4 और बटालियनें बनाई थी। पिछले सप्ताह हम लोगों ने चर्चा की थी, जो खासकर उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह राज्यों में तैनात की गई है, दिल्ली भी उसमें शामिल है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब प्राकृतिक विपदा पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा और हर साल पूछा ही जाता है, तो एक कॉमन सेंस से आप कुछ लिख तो आएंगे, क्योंकि प्रश्नों के स्वरूप इस तरीके के होते हैं कि उनमें जटिलता नहीं होती और बहुत ज्यादा वो कंटेंट की डिमांड भी नहीं करते। लेकिन मैंने महसूस किया है पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस को देखने के बाद कि यदि आप NDRF के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और थोड़ा सा और स्ट्रक्चर, जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, तो फिर जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपके उत्तर का जो शेड है, जो कलर है, वो थोड़ा सा ज्यादा गहरा हो जाता है और एग्जामिनर को ये लगने लगता है कि नहीं, आपने इस टॉपिक की विधिवत तरीके से तैयारी की है। तो इसके बारे में आपको मित्रों पढ़ लेना चाहिए। एक जो कंटेंट के रूप में, एक जानकारी के रूप में, तत्व के रूप में एक और खबर थी, वो रेलवे में भर्तियों को लेकर। आप रेल में सफर करते समय आपने देखा होगा कि रेलवे पुलिस अलग से होती, RPF जिसे हम कहते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल इसका हिंदी में नाम है। बेसिकली जो RPF है, रेलवे सुरक्षा फोर्स है, RPF, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। इसके बाद स्टेट की पुलिस होती है, स्टेट की पुलिस स्टेट के हाथ में होती है, हर राज्य की अपनी पुलिस होती है। अब आप देखेंगे कि जो रेलवे है वो तो पता नहीं कितने राज्यों से गुजर रही है, राज्यों से ही गुजर रही है। तो ऐसे में जो RPF है और जो स्टेट पुलिस है, उनमें एक कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन केंद्र सरकार ने सब कुछ स्टेट पुलिस के हाथ में नहीं सौंप रखा है कि भैया जब रेल आपके राज्य में होगी तब आप उसके आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी सुरक्षा करें। इसके बाद जैसे ही वो रेल दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करती है तो ये राज्य की पुलिस हट जाएगी और वो करे, ये सब तो राज्य अपने अपने ढंग से करते ही है। लेकिन रेलवे ने अपनी भी पुलिस, यानी कि केंद्र सरकार ने अपनी भी पुलिस स्पेशली रेलवे के लिए वो भर्ती करती है, जिसे हम आरपीएफ कहते हैं। आरपीएफ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए। आप जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि छोटा सा दफ्तर भी आरपीएफ का एक बना रहता है, जैसे पुलिस थाने होते हैं ना उसी तरह से इनका भी बना हुआ होता है। और जो महत्वपूर्ण खबर है इसमें कंटेंट है वो ये है कि सरकार ने कहा है, जो हमारे रेल मंत्री हैं उन्होंने, कि इसमें 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट हो गया। जब आप वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं के उत्थान की, तो आप कह सकते हैं कि देखिए पहली बात कि 50% यहां आरक्षण दिया गया है कि महिलाएं भर्ती होंगी। और याद रखिए कि ये इसमें इसके तहत एक और भी तत्व है। इससे पहले जब रेलवे में सुरक्षा वगैरह को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, बातें होती हैं, लेख आते हैं, तो उसमें उनमें भी इस बात की चर्चा की जाती है कि जो रेल के डब्बे हैं उनमें महिला पुलिस भी रखी जाए। उससे ऐसा लोगों का सोचना है कि जब महिला पुलिस होगी तो अपराध जो हैं वो ऑटोमेटिक कम होंगे, तो इसलिए यहां 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और नो डाउट कि समाज में जो समानता लाने की स्थिति है और जो लैंगिक भेद को समाप्त करने की जो बात है, तो इन सब प्रक्रियाओं से, आप कह लीजिए इन सब उपायों से, उनमें भी मदद मिलती है। तो ये दो तत्व मुझे आपको बताने थे फ्रेंड्स। आइए अब हम मुख्य विषय पर बात करते हैं। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जब आप सबसे ये कहता हूं कि पिछले 5 साल के अनसॉल्व पेपर तो कम से कम आपको कंसल्ट करने ही चाहिए, राइट? तो जब आप पेपर पढ़ते होंगे तो आप एक संकट से गुजरते होंगे, मुझे ऐसा लगता है मनोवैज्ञानिक स्तर पर। मान लीजिए कि आप पिछले 2 साल से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, 2017 से आपने तैयारी या 2016 से तैयारी करनी शुरू की और आप 2014 का क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, तो अब 2014 के क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आप उस समय के करेंट अफेयर्स से रिलेट नहीं कर पाएंगे कि भाई ये प्रश्न तो पूछा गया, ठीक है, लेकिन ये पूछा क्यों गया। तो सबसे बड़ा जो संकट स्टूडेंट के सामने होता है, आता है, वो इस बात को लेकर होता है कि वो प्रश्न तो सिलेबस से ही है, दैट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस से है, लेकिन सिलेबस से यही प्रश्न क्यों पूछा गया। नो डाउट कि जब आप एकदम सिलेबस से जोड़ करके देखते हैं तो आपको एकदम जुड़ा हुआ भी नहीं मिलेगा, लेकिन सिलेबस से बाहर भी नहीं मिलेगा। तो फिर स्टूडेंट ये डिसाइड करता है कि नहीं, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से तो यार कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी पढ़ने को मिलता है पढ़ डालो, रट डालो। मुझे लगता है कि ये एक अपने आप को भ्रम में डालने की स्थिति है, या इससे भी बड़ी बात मैं कहूंगा कि अपने को भटकाने की स्थिति है। आपको अपने आप को भटकने नहीं देना है, इसलिए कि आपको नहीं मालूम है कि ये प्रश्न पूछा क्यों गया है। नो डाउट कि आपने एक निष्कर्ष निकाला कि यह सिलेबस से है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन सिलेबस से इसे ही क्यों पूछा गया। फ्रेंड्स, जब आप थोड़ी सी गंभीरता से जाएंगे, या जो सीनियर स्टूडेंट हैं जो 2014 से तैयारी कर रहे हैं लेकिन जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, उनसे जब आप बात करेंगे कि भाई ये प्रश्न क्यों पूछा गया, तो वो शायद उसका खुलासा कर सकें, उसके सही कारण को बता सकें। और उसका कारण ये होगा कि भाई ये 2014-2013 के समय में हॉट टॉपिक था, उस समय ये बहुत ज्यादा डिस्कशन में था, इस पर खूब सारे आर्टिकल लिखे गए, सरकार ने इसको लेकर के और योजनाओं की घोषणा की, या उस समय यह देश की एक बड़ी समस्या बन चुकी थी, इसीलिए उस टॉपिक से इस तरह के प्रश्न बना लिए गए हैं। इस पर आप भरोसा कीजिए मित्रों, भरोसा कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आपका भरोसा इस पर हो जाएगा कि नहीं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जो केंद्र होता है वो करेंट होता है, तो 2-3 चीजें आपके साथ ऑटोमेटिक हो जाएंगी। पहला तो यह हो जाएगा कि आप जो फैलाव कर रहे हैं वो फैलाव आपका खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, अब 1 लीटर पानी आप गिलास में डाल दीजिए, ठीक है, और 1 लीटर उसी 1 लीटर पानी को आप ड्रम में डाल दीजिए, तो देखिए पानी की क्वांटिटी तो 1 लीटर ही है, लेकिन ड्रम में वो पानी फैल करके गहराई को खो देगा, लेकिन वही पानी गिलास में एक जगह सिमट कर गहराई में तब्दील हो जाएगा, वो गहराई बना देगा। यानी कि जब आपको इस बात की थोड़ी सी जानकारी हो जाती है कि प्रश्न कहां कहां से पूछे जाने की संभावना है, तो आप फिर अपनी तैयारी को वहीं तक सीमित रखते हैं, और जब सीमित रखते हैं तो उसी टॉपिक को या कुछ टॉपिक्स को आप बहुत गहराई से बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, तो उस विषय में आपकी गहराई आ जाती है और वही आपको सफल बनाती है। तो खासकर आज प्रश्नों की समझ के तहत मुझे लगा कि ये बात मुझे स्पेशली बतानी चाहिए, ताकि आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो तैयारी है, वो फोकस्ड तरीके से हो सके। जैसे फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर थर्ड की हम लोगों को आज बात करनी है कि क्वेश्चन पेपर जो थर्ड पेपर है, जो बेसिकली यू कह लीजिए कि इकोनॉमिक्स पर बेस्ड, मेनली तो उसमें इकोनॉमिक्स ही है, बाकी फिर ठीक है, रिजर्व क्या कहते हैं आपके प्राकृतिक आपदा और सुरक्षा जैसे विषय भी हैं, विज्ञान भी है, लेकिन मूलतः तो वो इकोनॉमिक्स का पेपर है। अब इकोनॉमिक्स पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप अगर अभी तैयारी करना आपने शुरू किया है, या बहुत सतर्कता से आप तैयारी नहीं कर रहे, भले ही आप पिछले 4 सालों से कर रहे हो, तो आप पकड़ नहीं पाएंगे कि ये चीज क्या है। और देखिए, ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है, इसकी जो मैं समझता हूं कि जो एक वैल्यू हो सकती है आपके लिए, जो एक काफी ये मदद कर सकता है, वो यही कि आपको वो टॉपिक बताता है, ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है, कि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पर तैयारी कीजिए। इसका मतलब नहीं कि बाकी छोड़ दीजिए, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, इस पर आप फोकस्ड कीजिए। जैसे 2017 के मेंस थर्ड पेपर में एक पहला ही प्रश्न पूछा गया, आप देखिए, और कितना कॉमन प्रश्न है, बड़ा मजेदार सरल प्रश्न है, लेकिन अगर आपकी पकड़ में नहीं है तो वो कठिन हो जाएगा, बट नेचुरल है। पहला प्रश्न है कि भारत के संभाव्य समृद्धि के अनेक कारकों में बचत दर सर्वाधिक प्रभावशाली है, क्या आप इससे सहमत हैं? समृद्धि संभाव्यता के अन्य कौन से कारक उपलब्ध हैं? 150 शब्द, 10 नंबर का प्रश्न है ये। मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। Among several factors of India's potential growth, saving rate is the most effective one. Do you agree? What are the other factors available for growth potential? आंसर इन 150 वर्ड्स। ये मित्रों क्वेश्चन है। जब आप इस प्रश्न पर थोड़ा सा विचार करेंगे, देखिए ऊपर से पढ़ करके गुजर जाना एकदम अलग बात होती है, मैं इसलिए बार बार कहता हूं विचार करेंगे, विचार करेंगे। जब आप विचार करेंगे तब फिर आपको यह प्रश्न इनफैक्ट सही मायने में समझ में आएगा। सबसे पहली बात तो यही है जिस पर हम लोग अभी खासकर चर्चा भी कर रहे हैं कि यह प्रश्न पूछा क्यों गया। अब आप अपने सिलेबस में देखिए तो बचत दर का अलग से कहीं उल्लेख नहीं है, इसमें तो बचत दर ही दिया हुआ है ना, बचत दर का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ये आपके आर्थिक विकास से तो जुड़ा हुआ है, संभाव्य समृद्धि की तो बात कर रहा है ना, तो आर्थिक विकास से तो जुड़ा हुआ है, तो देश की जितनी योजनाएं हो रही है अर्थशास्त्र से संबंधित, वो आर्थिक विकास के लिए हो रही है, तो बट नेचुरल है कि उसी के तहत ये सेविंग भी शामिल है। लेकिन यदि आप सतर्कता के साथ तैयारी कर रहे हैं तो पिछले साल सरकार ने कुछ सेविंग्स स्कीम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए थे, यानी कि जो ब्याज दर थी उसको घटाया था, और जब ब्याज दर को घटाया था तो उसको लेकर के कुछ लोगों ने आपत्ति भी की थी और अखबारों में आर्टिकल्स भी आए थे, लगभग 1.5-2 साल पहले की बात नहीं, अब तो चूंकि हम 2018 के इसमें पहुंच गए तो 2.5 साल पहले की बात है, क्योंकि ये पेपर तो पिछले साल मतलब आप कह लीजिए कि अक्टूबर में आ चुका है, तो उसकी आलोचना भी हुई थी, और आलोचना जब की गई थी, एडिटोरियल कमेंट्स भी इस पर लिखे गए थे, और उन्होंने बताया था कि भाई इससे क्या इंपैक्ट होगा, और लोगों ने कहा था कि इससे बचत दर हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि जब ब्याज कम मिलने लगेगा तो लोगों का आकर्षण कम हो जाएगा, वो दूसरी तरफ जाएंगे, इस तरह के लोगों ने अपने कमेंट दिए थे। उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। तो इस तरीके से जब आप प्रश्नों को जोड़कर देखेंगे तो उसकी जो सबसे बड़ी खासियत हो जाएगी वो है कि आप तुरंत अपने प्रश्न को करंट से जोड़ लेंगे, अदरवाइज आप उसे ड्राई तरीके से समझेंगे और ड्राई तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल शुष्क तरीके से, कि जैसे आप किताब की भाषा लिख रहे हो, लेकिन जैसे ही आप उसे करंट से जोड़ देंगे आपके उत्तर का जो स्वाद है जो बुनावट है वो एकदम बदल जाएगा। तो मित्रों, खासकर चूंकि वक्त हो चला है, तो आज प्रश्नों की समझ के तहत हम लोग इतनी ही बात करने की स्थिति में है। आगे और भी बातें होंगी, ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, कभी न खत्म होने वाली चर्चा है, इतने सारे विषय हैं, हम लोग आगे बात करेंगे। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित कुमार, अनुरुद्ध कुमार, राजकुमार लड्डा जी फरीदाबाद हरियाणा से, इश्तियाक अयूब कश्मीर से, सुजाता आर्य शिमला बहादुर उत्तराखंड से, राहुल उपाध्याय नई दिल्ली से, तुलसी राजपूत सागर मध्य प्रदेश से, प्रीति मिश्रा पूर्वा उत्तर प्रदेश से, और दीप्ति मिश्रा, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।